भगवान के कर्म लीला में कोई भेद नहीं। हम लोग जो कुछ करते हैं शरीर मन बहने के द्वारा उसे कर्म कहा जाता है। क्यों? हम माया के अधीन है, काल के अधीन है, अधीन हो करके जो कुछ करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। भगवान माया के या काल के अधीन नहीं है, स्वयं स्वतंत्र सराग पुरुष है, इसलिए वे जो कुछ करते हैं उन्हें लीला कही जाती है। अतः भगवान के स्वरूप का कोई भेद नहीं, स्वजातीय है। जैसे भगवान के बहुत से अवतार भी हैं, और भगवान श्री राम भी है, नरसिंहदेव है, कृष्ण है, विष्णु है, नारायण है, सभी तो बहुत से प्रकाश है, केशव, नारायण, गोविंद, दामोदर, पद्मनाभ, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, और उधर में नृसिंह, हरि, जनार्दन इत्यादि बहुत से अवतार हैं। सभी चतुर्भुज और सभी जितने भी अवतार हैं शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, तो भगवान के बहुत से अवतार हैं। फिर पुरुषावतार, गुणावतार, युगावतार, लीलावतार, मन्वंतर अवतार, सत्तावेश अवतार, अतः जितने भी अवतार आए हुए वे सभी एक मूल विग्रह श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, सभी उन्हीं के प्रकाश हैं। और जितने भी अवतार हैं विष्णु तत्व हैं, सभी स्वयं स्वतंत्र हैं, तब भेद होना चाहिए। पूरे स्वयं स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र है, भगवत इच्छा के अधीन। जैसे इच्छानुरूपम बीजस्य चेष्टते सा, माया देवी, देवी दुर्गा जी गोविंद के इच्छा के अनुरूप सभी कार्य को किया करती है। ऐसे ही भगवान के जितने भी अवतार हैं वे सभी स्वयं स्वतंत्र होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के इच्छा के अधीन होकर के सभी कार्य करने के कारण वे स्वयं स्वतंत्र सत्ताशील होकर के भेद में नहीं आए, इसलिए स्वजातीय भेद रहित कहा गया है। इसी प्रकार विजातीय भेद, जितने भी जीव और जगत जो आए हैं, ये सारा संसार और जीव समुदाय, इस सभी कुछ भगवान के अवयव माने गए हैं और भगवान से ही आए हुए हैं। ममई वांश जीव लोग के जीव भूत सनातन, जितने भी जीव हैं सभी मेरे ही अंश हैं। अपरियाम इतस्तु अन्नम प्रकृतिम वृद्धिते परा, ये भूमि जल अग्नि वायु आकाश ये अष्टधा प्रकृति है, जड़ा प्रकृति है, परंतु और एक परा प्रकृति है जीव भूता महाबाह, जीव रूपा परा प्रकृति कही गई है। भगवान के विभिन्न अंश प्रकाश, शक्ति के प्रकाश, भगवान के सत्य के प्रकाश, इसलिए जीवों को तटस्थ कहा गया, तटस्थ सत्य से हुआ है विभिन्न अंश। अब जगत जो है ये भी तो भगवान का ही स्वरूप है, ये कोई स्वयं स्वतंत्र सत्ताशील पृथक नहीं है, परंतु तो जगत को तो जड़ रूप में हम देखते हैं और भगवान चेतन वस्तु पूर्ण चिन्मय, तो भेद स्वाभाविक रूप से ही भेद दिखता है, एक जड़ और दूसरा चेतन, तो भेद तो आता ही है। परंतु इस संसार भगवान का ही स्वरूप है। से नारद जी कहते हैं भगवान इव इतरो, भगवान इव भगवान ही है, परंतु इतर भगवान से पृथक है। बोले कैसे? भगवान ने ही इस संसार को बनाया है। बोले कैसे बनाया? अपने स्वयं ने स्वयं को स्वयं के द्वारा, यानी भगवान स्वयं अपने को अपने द्वारा अपने अपने लिए अपने में से और अपना ये जगत और अपने में ही सातों कारक के द्वारा भागवत में दिखाते हैं कि भगवान ने ही अपने लिए अपने को अपने द्वारा स्वयं ही इस विश्व जगत को बनाया। और ये विश्व जगत जो कुछ है सारा ही उनका अवयव है, क्योंकि विश्व रूप को या भगवान ने जो विराट रूप दिखाया है उसमें उन्होंने कहा, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए दिखाए गए कि स्वर्ग जिनका मस्तक है, पाताल जिनके पदतल है, पृथ्वी लोक जिनका कटी देश है उदर, और समुद्र जिनके उदर है, सिराए जिनकी नदियां, ये नदियां जिनकी सिराए हैं, पर्वत समुदाय जिनके वक्षस्थल है, वृक्ष समुदाय जिनके रोंगटे हैं, इसी प्रकार संपूर्ण विश्व जगत, चंद्र सूर्य जिनके नेत्र हैं, समस्त दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, ये विराट रूप है भगवान का स्वरूप। ये पृथक रूप से कुछ भी नहीं है, उन्हीं से ही प्रकाशित हुआ है, उन्हीं में ही समा जाता है, परंतु सारा विश्व जगत का चूर्ण विचूर्ण होने पर भी, यानी परिवर्तन होने पर भी, नाश होने पर भी, भगवान का कभी विनाश नहीं होता है, भगवान इनके त्यों है, अणु अणु में सर्वव्यापी बन करके अवस्थित है, और संपूर्ण विश्व जगत भगवान में ही अवस्थित है, इसलिए संपूर्ण विश्व जगत उन्हीं से ही प्रकाशित हुआ है, स्वयं स्वतंत्र सत्ताशील बन करके कोई नेचर से या कोई वस्तुओं के सम्मिश्रण से अपने आप नहीं बने। अतः स्वजात स्वजातीय विजातीय भेद रहित अद्वैय ज्ञान परतत्व, ऐसे अद्वैय ज्ञान परतत्व का निरूपण करते हुए कहा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी अवतारों का वर्णन किया गया है, 24 अवतारों के निर्माण करते हुए कहा, ये सभी कोई अंश तथा कोई कला है, परंतु कृष्ण जो है वो स्वयं है, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं कहने से स्वयं और सराट एक ही चीज हुआ, जो स्वयं स्वतंत्र सत्ता से है। अतः चैतन्य चरितामृत में इसलिए वर्णन कर दिया, अद्वैय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेन्द्र नंदन, वह अद्वैय ज्ञान तत्व कौन, ब्रज में ब्रज विलासी श्याम सुंदर, द्विभुज मुरलीधर पीताम्बर धारी, इसलिए ब्रह्म संगीत ये गोपाल तापन उपनिषद में भी कहा है, द्विभुजं मौन मुद्राभ्यां वनमालिनम् ईश्वरं मेघावं वैद्युताम्बरं, योगी कहा गया है मंत्र ध्यान में भी भगवान का स्वरूप द्विभुज मुरलीधर पीताम्बर धारी गले में वनमाला सुषुप्त, ऐसे जो ब्रज विलासी श्याम सुंदर है वे ही सर्वश्रेष्ठ तत्व परम तत्व, सभी शास्त्रों में उन्हीं का निरूपण हुआ है, इसलिए श्रीमद् भागवत में कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमन। माता कुंती देवी ने जबकि प्रार्थना की कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, जब कृष्ण ने कहा कि आप आज कुछ भी वर मांग लें, जो चाहेंगे मैं वही दूंगा, कुछ भी चाहे, तब कुंती देवी ने कहा कि हे कृष्ण हमें तो यही वर दीजिए, विपद संतु सत्र सत्र जगत गुरु, कि हमारे ऊपर हजारों विपत्तियां आ गई। अब कृष्ण को भी हैरान में डाल दिया कि बोले अरे सभी लोग कुछ न कुछ मांगते हैं और इनसे कहा कि कुछ मांगे तो वो विपत्ति मांग ली, कोई विपत्ति चाहता है क्या, कोई भी तो नहीं चाहते, पर भगवत में ऐसे दिखा दिया कि कुंती देवी तो विपत्तियों को मांग रही है कि बोले हमें और विपत्तियां में और नित्य हमेशा, बोले ऐसा क्या हुआ, बोले जहां आपका दर्शन मिल जाता है हर विपत्तियों में आप हमारे सामने आ जाते हैं, सुसमय में आनंद के घड़ी में आनंद की बेला में तो आपका दर्शन ही नहीं मिलेगा, पर विपत्ति में हर किसी विपत्ति में सामने आकर के आप खड़े हो जाते हैं। जीवन में हमारे जीवन में कितनी सारी विपत्तियां आई, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के तब से जीवन भर केवल विपत्ति विपत्ति परेशानियां आ रही, परंतु कुछ भी परेशानियां हम लोगों को बिगाड़ नहीं सकता, क्यों, आपके होने के कारण। इसलिए हमें वही चाहिए जिससे कि आपका दर्शन हो। तब उन्होंने प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय। अब कृष्ण कहने से जो कि कलयति नियमयति इति, कृष्ण जो काल रूप में सबकी परिचालना करते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं हमें वो काल रूप में नहीं चाहिए, सर्वाकर्षक जबकि आप सभी को अपने रूप माधुरी गुण माधुरी के द्वारा आकर्षण करते हैं और सभी के चित्त मन को चुराते हैं, ऐसे जो कृष्ण है आप हमारे मन को भी चुरा रहे हैं, हृदय को चुरा रहे हैं और अपने चरणों में आकर्षण बना रहे हैं। संसार का संबंध भौतिक संबंध सब कुछ छोड़ जाए, आपके चरणों में हमारी दायित्व की भरी है और मेरे भाई वसुदेव के आप पुत्र हैं इसलिए वासुदेव हैं और उससे भी अधिक सौभाग्यवती देवकी देवी हैं और देवकी से भी अधिक सौभाग्यवती कौन है जो कि नंद गोप कुमार है, नंद महाराज जी। तो नंद महाराज जी का अतिशय सौभाग्य और यशोदा मैया की बात तो हम नहीं कह सकती है। इस तरह से जो गोविंद सबको आनंदित करने वाले तथा उन परिकरों के द्वारा स्वयं ही आनंदित होते हैं, आपके चरणों में पुनः पुनः नमन।
भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के बाद में और कोई गुरु के बाद बस यहीं तक समाप्त हो गए। Western devotees, they think that after some Bhakti Vedanta Swami Maharaj, no guru will come. And that is why we should establish retreat. Aur kehte hain jaise rupanu hai waise hi prabhu padanu hona chahiye. To ye sab galat vichar hai, sampurna siddhant vichar hai. गुरु परंपरा रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी और जिनसे पहले भी गुरु वर्ग हो गए जिसको उन्होंने स्वीकार किया गुरु परंपरा, और उनके बाद भी गुरु परंपरा चलती रहेगी, कभी नष्ट नहीं होगी। क्यों? यदि गुरु नहीं आएंगे शुद्ध तो पृथ्वी टिक नहीं सकती, ये जरूर होगा। दूसरी बात भाई, भगवान के भजन करने के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा करो, दूसरे लोगों का दोष दर्शन नहीं करेंगे और किसी का क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मत करो। मुक्त भगवान ने बनाया है, स्वतंत्र बनाए, इसलिए जिसकी तिसकी जब तक निंदा करते हैं, अपनी निंदा नहीं करते, दूसरों को के अंदर में भगवान को देखो और समय न मिलने की उसका दोष देखो। मैं ये देखता हूं कि अच्छे अच्छे तब तक ये लोग भी दूसरों लोगों को के गुणों को नहीं लेते, उनके दोष को देखते हैं और अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता। जिस दिन अपना दोष दिखाई पड़ जाएगा तो परमहंस हो जाएंगे। परमहंस बनो, जब मिलो या तो भगवान की चर्चा करो या रूप रघुनाथ इत्यादि वैष्णव की चर्चा करो, उसे भी नीचे आओ तो किसी वैष्णव के गुणों को का वर्णन करो, दोष कभी मत देखो। भगवान के भजन में यही सबसे बड़ी बाधा है, इसे बढ़कर कर कोई बाधा नहीं। भगवान ने जीव को बनाया, रीढ़ नहीं दी, लप लपाती है, इधर चलती है, इधर चलती है, ऊपर चलती है, नीचे चलती है और जहां कोई कुछ होगा ना खटका वहीं पर जाती है। इसको कंट्रोल करने में मुनि लोग भी संभव नहीं कर पाते, सबसे पहले ये करना
पड़ेगा।
तुमको भी, सब लोगों को यही नहीं, कितने साधु आएंगे, कितने क्या होगा, ये सब चीजों को समझो, तब तो भगवान का भजन होगा। और तो जो भगवान का थोड़ा बहुत भजन करते हैं वो निंदा के रूप छेद से भजन निकल जाता है, अपराध होता है, और अपराध से संसार की वृत्ति आती है करने की, काम हो और सब नष्ट हो जाता। और जो लोग कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करते, यदि कुछ कभी करते हैं तो उसको सुधार करने की, भीतर की अंतर की जो कृपा है उसके द्वारा करते हैं, जो समर्थ है। हम लोग समर्थ नहीं है, इसलिए खबरदार किसी भी व्यक्ति का दोष मत देखो और उसकी चर्चा मत करो, उसकी निंदा मत करो, ये सबसे बड़ी बात है। हम सुनते हैं कि अच्छे अच्छे लोग जो भजन करने वाले हैं, घर बार छोड़नी है, वो लोग इसमें मत हो जाते, और होता है कि भजन तो होता नहीं। और रूप गोस्वामी के उपदेशामृत को पाठ करो, और वैसे ही एक एक जो उपदेश है उसको पालन करो। पहले ये भित्ति है भजन की, भजन की भित्ति बन जाएगी तो अपने आप ये सब होने लगेगा। इसलिए कहा है निंदा दिशुन हृदय में क्षति, ऐसा होना चाहिए। इसलिए आज यहीं पर वक्तव्य समाप्त करता हूँ। प्रैक्टिस करो, बड़ा कठिन है ये, तभी प्रैक्टिस करो, प्रतिज्ञा कर लो आज से किसी वैष्णव की या किसी की हम निंदा नहीं करें। और अपना दोष देखो जी हमारे अंदर में क्या दोष है, इस ये अभ्यास करो। जब देखोगे देखो जी कितने दोष हमारे अंदर में भरे पड़े, तब सफाई भजन होगा, घर बार छोड़ना, दीक्षा देना, सब सब तो एकदम आम।